नमस्कार भारत, आज है 16 दिसंबर दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सीरिया के अलेप्पो में फंसे 3000 लोगों को निकाला गया, राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। भारत में संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, सत्ता और विपक्ष के आरोपों प्रत्यारोपों में धुल गया सत्र, आज विपक्ष के नेता राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात।
जब भी संसद में या किसी भी अन्य विधायक में विपक्ष की संख्या कम होती है तब वो शोर ज्यादा मचाता है। अगर कांग्रेस के पास 150 सीटें होती, मान लीजिए 125 सीटें होती, तो कांग्रेस ज्यादा धीर गंभीर होकर संसद की कार्रवाई चलने देती।
जटिल और मुश्किल माने जाने वाले भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पुलिस अधिकारी ने पदों में रचा संविधान।
26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं।
होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सीरिया के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी अलेप्पो में फंसे 3000 से ज्यादा लोगों को बसों और एम्बुलेंसों के जरिए बाहर निकाला गया है। इनमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों को बाहर निकालने में कई दिन लग सकते हैं। पूर्वी अलेप्पो पर बीते 4 साल से विद्रोहियों का कब्जा था। सरकारी सेना ने इस हफ्ते ज्यादातर क्षेत्र पर अधिकार हासिल कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि सीरिया की मुक्ति ऐतिहासिक मौका है। यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख डोनाल्ड टुस्क ने कहा है कि यूरोपीय संघ अलेप्पो और सीरिया के दूसरे हिस्सों में जारी त्रासदी को रोकने में प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। उन्होंने रूस की ओर संकेत करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि संघर्ष में कौन प्रभावी साबित हो रहा है, लेकिन यह प्रभाव मानवीय सहायता नहीं बल्कि बमबारी के मामले में है। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया को मानवीय मदद देने के मामले में यूरोपीय संघ सबसे आगे है। अमरीकी सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल अकाउंट की कथित हैकिंग के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जानकारी थी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार बेन रोथ्स ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की जानकारी के बिना साइबर हमला नहीं हो सकता था। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस ने कहा कि CIA की अक्टूबर की रिपोर्ट में साफ किया गया था कि हैकिंग के लिए सर्वोच्च स्तर से इजाजत दी गई थी। उन्होंने कहा,
Well, I guess the reference to senior most officials in Russia would lead me to conclude that based on my
मैं समझता हूं कि रूस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी का जिक्र होने का आशय हमें कहां ले जाता है। मेरी निजी राय के मुताबिक ये साफ है कि वो रूस के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी की बात कर रहे थे। ये थे जोश अर्नेश के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इजिप्ट एयर विमान हादसे की जांच कर रहे फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि अब तक ये साफ नहीं है कि विमान दुर्घटना की वजह क्या थी। ये विमान मई में पेरिस से काहिरा जाते वक्त भूमध्य सागर में गिर गया था। विमान में सवार सभी 66 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले मिस्र के अधिकारियों ने कहा था कि हादसे में मारे गए लोगों के शरीर से विस्फोटक के अंश मिले हैं। फ्रांस की जाँच एजेंसी ने एक प्रवक्ता ने कहा कि सैंपल किस तरह से लिए गए इसकी जानकारी नहीं होने तक ये नहीं कहा जा सकता है कि हादसे की वजह क्या थी। यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच रूस पर अगले 6 महीने के लिए आर्थिक प्रतिबंध जारी रखने को लेकर सहमति बनी है। इसका प्रभाव रूस के रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र पर होगा। यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला क्राइमिया पर रूस के कब्जे और यूक्रेन में दूसरी कार्रवाइयों को लेकर किया है। संघ ने यूक्रेन के साथ समझौते को भी मंजूरी दी है, लेकिन इससे उसे यूरोपीय संघ की सदस्यता अपने आप नहीं मिलेगी। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने ब्रसेल्स में इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमने कानूनी तौर पर बाध्यकारी फैसला लिया है। ये फैसला सभी देशों के प्रमुखों और हमारी सरकार ने लिया है, जो कि नीदरलैंड्स के सारे मामले देखती है। ये फैसला आसान नहीं था, ये सुखद भी नहीं है, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि रूस की अस्थिर करने वाली विदेश नीति के खिलाफ यूरोपीय संघ एक संयुक्त मोर्चा बना सकता है। ये थे मार्क रूटे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सरकार मुसलमानों से भेदभाव के मामले में मिशिगन के शहर स्टर्लिंग हाइट्स पर मुकदमा करेगी। इस शहर में मस्जिद बनाने की योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ये मजहबी आधार पर भेदभाव का मामला है। वहीं स्टर्लिंग हाइट्स का कहना है कि जमीन के इस्तेमाल को लेकर जो पैमाना निर्धारित है उसके आधार पर ही प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू हो चुका है। पहले काफिले में करीब 3,000 लोगों को बाहर निकाला गया है, इनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया है। वहीं अमरीका ने सीरिया और रूस से बातचीत की मेज पर आने का आग्रह किया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
बीस बसों और 10 एम्बुलेंस की कतार और उनमें सवार सैकड़ों लोग। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान एक दिन देर से शुरू हो गया। आम लोगों, विद्रोहियों और उनके परिवारों को बुधवार को ही निकाला जाना था, लेकिन पूर्व में लागू हुआ संघर्ष विराम टिक नहीं सका। पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को विद्रोहियों के कब्जे वाले पड़ोस के इदलिब प्रांत में भेजा जा रहा है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मध्य पूर्व के निदेशक रॉबर्ट मार्डिनी ने अपने सहयोगियों से मिली जानकारी के आधार पर बताया, हमारे सहयोगियों ने जो हमें अंदर की जानकारी दी है वो दिल तोड़ने वाली है। लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं, वो बुरी तरह थके हुए हैं, वो हमें देखकर बहुत खुश हैं, वो वहाँ पहुँचने के लिए हमारे शुक्रगुजार हैं। हालांकि हम नाकाम रहे हैं क्योंकि बहुत देर के बाद उनके लिए बहुत कम मदद हो पा रही है, हालांकि ये मदद अहम है। ये थे रॉबर्ट मार्डिनी के शब्द। पूर्वी अलेप्पो पर करीब 4 साल से विद्रोहियों का कब्जा था, लेकिन इस हफ्ते रूसी हवाई हमलों की मदद से सीरिया की सेना ने पूर्वी अलेप्पो के ज्यादातर हिस्से पर अधिकार हासिल कर लिया। इसे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। असद ने ट्विटर पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा, मैं मानता हूं कि अलेप्पो की मुक्ति के बाद हम कहेंगे कि न सिर्फ सीरिया, न सिर्फ इस क्षेत्र में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बदली हुई है। अलेप्पो की आज़ादी के पहले और अलेप्पो की आज़ादी के बाद, ये इतिहास में दर्ज होगा। ये थे बशर अल असद के शब्द। उधर वाशिंगटन में अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि अगर असद और रूस चाहें और इसके लिए जनेवा में बातचीत की मेज पर लौटें, तो सीरिया में मौत और दर्द का सिलसिला थम सकता है। उन्होंने कहा,
The only remaining question is whether the Syrian regime, with Russia's support, is willing to go to Geneva.
जो सवाल बाकी है वो ये है कि क्या रूस के समर्थन वाली सीरिया की सरकार जनेवा जाने और रचनात्मक तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार है, और क्या वो अपने ही लोगों की हत्याओं को बंद करने के इच्छुक हैं या नहीं। हमें इस बारे में साफ सोच रखनी चाहिए कि हमने जो सीरिया में देखा है और जो देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये थे जॉन कैरी के शब्द। सीरिया में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की प्रमुख मरियाना गासर ने बताया, कोई ये नहीं जानता है कि पूर्वी हिस्से में अभी कितने लोग बचे हैं। इन सभी को बाहर निकालने में कई दिन लग सकते हैं। रूस ने जानकारी दी है कि सीरिया के प्रशासन ने अलेप्पो छोड़ने वाले सशस्त्र समूह के सभी सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी ली है।
ब्यूरो सुना रहे थे वात्सल्य राय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है। हालांकि इस पूरे सत्र में विधायन का कोई खास काम नहीं हुआ है और पूरा का पूरा सत्र सत्ता और प्रतिपक्ष की रस्साकशी की भेंट चढ़ गया है। विवाद होते रहे, आरोप लगते रहे, लेकिन कामकाज नहीं हो सका। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस दौरान अपने आरोपों से भूकंप लाने तक की बात की और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी भी यही बात दोहराती रही है कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इन सबके बीच ये भी दिखा कि राजनेता आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उसे साबित करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहे। यहां तक कि अदालत तक जाने की भी बात नहीं हो रही। इस खेल में सभी दलों के नेता शामिल हैं। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे से पूछा कि क्या भारत की राजनीति में अब यही परंपरा बनती जा रही है।
समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमें इतना बहुमत मिल गया है, हमारी सारी बातें मान ली जानी चाहिए। क्योंकि विपक्ष कमजोर है, जब भी विपक्ष कमजोर होता है तो वो ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है और वो ऐसे तरीके अपनाता है जो कि आमतौर पर सामान्य तरीके नहीं होते। संसदीय बहस हमेशा ही आप देखें, जब भी संसद में या किसी भी अन्य विधायिका में विपक्ष की संख्या कम होती है तब वो शोर ज्यादा मचाता है। अगर विपक्ष मजबूत स्थिति में होता, अगर कांग्रेस के पास 150 सीटें होती, मान लीजिए 125 सीटें होती, तो कांग्रेस ज्यादा धीर गंभीर होकर संसद की कार्यवाही चलने देती। आप दिल्ली विधानसभा में देखिए, बीजेपी के पास केवल 3 विधायक हैं, रोज हंगामा होता है, रोज उनको धक्के देकर वहां से निकालना पड़ता है। ये सब कुछ जो हो रहा है, जिसमें आरोप लगाए जाते हैं, फिर आरोपों को प्रमाणित नहीं किया जाता, उसके लिए सबूत नहीं दिया जाता और संसद में कोई बहस नहीं हो पाती और संसद के बाहर भी बहुत तल्खी है, संसद के अंदर भी बहुत तल्खी है। ये सब इस कारण से है कि एक पक्ष के पास बहुत ज्यादा बहुमत है और दूसरे पक्ष के पास बहुमत बहुत कम है। जिसके पास बहुत ज्यादा बहुमत है वो ये मानता है कि हमें बहुमत मिल गया है इतना, अब सब लोगों को हमारी बात मान लेनी चाहिए, किसी बात पे आपत्ति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का कहना यह है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, दोनों एक दूसरे को कोई भी गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। अब नोटबंदी के फैसले पर नरेंद्र मोदी को विपक्ष मानता है कि ये उस फैसले में फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा फैसला है ये। विपक्ष मानता है कि इस फैसले के आधार पर हमें निश्चित कर सकते हैं, इन्होंने खुद ही हमें मौका दे दिया है। इसलिए तल्खी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए सब ये बातें हो रही है।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में संसद का एक पूरा सत्र एक बार फिर से जो है बिना किसी कामकाज के खत्म होने जा रहा है, उसका आखिरी दिन है और कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ कामकाज हो पाएगा।
कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आशान्वित नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि निकट भविष्य में संसद के किसी भी सत्र के प्रति मैं आशान्वित नहीं हूँ। उन सभी सत्रों का भविष्य अंधकारमय है और ये तब तक अंधकारमय रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों का फैसला नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव ये तय करेंगे कि दरअसल संसद की कार्यवाही किस तरीके से चलेगी, पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह के संबंध होंगे और राजनीतिक शक्तियों का संतुलन किस करवट बैठेगा। अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर साबित होती है तो देश की राजनीति एक अन्य दिशा में जाएगी, और कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पराजित हो गई तो देश की राजनीति का जो रवैया है वो पूरी तरीके बदल जाए।
संसद की कार्रवाई पूरी हो और इस तरीके से कि उसका उपयोग होता रहे वो बेकार न जाए, इसके लिए क्या कुछ अभी किया जा सकता है?
देखिए, संसद का और सड़क के बीच में एक संबंध होता है, एक जीवन संबंध होता है। सड़क पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसका असर संसद के ऊपर पड़ेगा ही। अगर सड़क के ऊपर बहुत तल्खी भरी राजनीति हो रही है तो संसद के अंदर बैठकर बैरिस्टराना और सेमिनाराना अंदाज में बहसें नहीं हो सकती है। इन दोनों का हमेशा आपसी संबंध रहा है, जब भी ये संबंध गड़बड़ाया है नतीजा ऐसा ही निकला।
तो अब लोगों को इंतजार ही करना होगा,
लोग वोट देकर फैसला करेंगे कि क्या होगा। अंततः तो जनता के हाथ पर फैसला है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जो जनता तय करेगी कि ये तमाम सारे जो कदम उठाए हैं सरकार ने, चाहे वो नोटबंदी का कदम हो या और कोई दूसरे कदम हो, या निकट भविष्य में 30 तारीख के बाद सरकार कदम उठाने जा रही है, मुझे लगता है निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इस नोटबंदी के फैसले के बाद में कुछ आनुषंगिक, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज भी लाएंगे, उसका उससे तय होगा कि राजनीति की दिशा क्या बनेगी।
ये थे राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। विपक्षी नेता आज नोटबंदी और संसद में बोलने न देने के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में AIADMK ने हाल ही में दिवंगत हुई नेता जयललिता की करीबी शशिकला नटराजन को पार्टी का अगला प्रमुख बनाने की घोषणा की है। पिछले 35 वर्षों के ज्यादातर हिस्से में शशिकला जयललिता के न सिर्फ घर में बल्कि उनके जीवन में भी सबसे करीब रही हैं। जयललिता ने अपनी पार्टी और संपत्ति के वारिस के बारे में कोई वसीयत नहीं की है। ऐसे में जयललिता का असल उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनकी संपत्ति और राजनीतिक विरासत को संभालेगा? हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने यही सवाल पूछा वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से।
देखिए, उन्होंने विल नहीं छोड़ा तो इसका जो वारिस होगा वो जाहिर है कि विवादों में फंस जाए। परिवार से तो खैर दूरी रही है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि ट्रस्ट बने या AIADMK पार्टी के लिए छोड़े या शशिकला नटराजन को छोड़े। और की जो नीस है दीपा जयकुमार, वो जिस ढंग से लगातार इंटरव्यूज देते जा रही है, अचानक इतने सालों में तो ज्यादा कुछ जिक्र हुआ नहीं। मालूम था कि ऐसा एक परिवार है, चेन्नई के मामले में रहते थे, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं लगा। लेकिन अब जिस ढंग से अग्रेसिवली जो इंटरव्यूज दे रही है, सवाल पूछ रही है शशिकला के भूमिका पे, वो किसी के अनुमति के बिना या पुश या सपोर्ट के बिना तो नहीं बोलती होगी, क्योंकि इस वक्त जब शशिकला अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है, शशिकला को कन्फ्रंट करने का मतलब है कि कुछ फोर्सेस जरूर उनके पीछे हैं जो उनको थोड़ा हवा दे रहे हैं।
अगर उनकी संपत्तियों का जिक्र करें तो एक कोई मोटा सा अनुमान कि क्या कुछ उसमें शामिल है?
देखिए, वो पोएस गार्डन में एक आलिशान बंगला है, फिर ये नीलगिरीज में कोडनाड में उनका बड़ा एस्टेट है, बहुत ही बड़ा एस्टेट है, और एक फार्म हाउस भी है ईस्ट कोस्ट रोड में, ये तो हमारी जानकारी में है। इसके बावजूद भी और अनेक कुछ संपत्तियां हो सकती हैं, ऐसे कहा जा रहा है कि मलेशिया में भी कुछ खरीदा है, तो हमें एग्जैक्ट आकलन देना मुश्किल होगा, लेकिन ये तीन चार तो हमें मालूम है कि है ही है।
कोई वसीयत ना होने की स्थिति में इस संपत्ति पर दावा तो उनकी पार्टी का ही होगा?
नहीं, ऐसे कोई एस्टेब्लिश रूल तो नहीं है कि दावा पार्टी का ही होगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ दावा परिवार का बनता है। इतनी तो एस्टेब्लिश है कि जो जयकुमार है उनके सगे भाई थे, दीपा जयकुमार की बेटी है और एक भाई भी है दीपक, उनकी एक भाभी भी रहती है वहाँ चेन्नई में। ब्रदर का तो खैर निधन हो गया।
इस वक्त जो शशिकला हैं वो उस घर में रहती हैं और पूरे अधिकार के साथ रहती हैं, और अब पार्टी ने उनको अपना महासचिव बनाने की घोषणा हो चुकी है, तो उनके लिए कितना आसान होगा उस विरासत को संभालना?
अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो शशिकला जी के लिए बहुत मुश्किल है। ये जो AIDMK की राजनीति है वो पूरी तरह जातिवाद से जुड़ी हुई है, और AIDMK में एक तेवर कम्युनिटी हावी है और दूसरे गाउंडर कम्युनिटी हावी है। इसके अलावा उनके पास काफी सारे दलित MLAs भी हैं। तो इस समय पनीर सेल्वम भी तेवर हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, और शशिकला है वो भी तेवर है, हालांकि दोनों अलग अलग सबकास्ट को बिलोंग करते हैं। तो अब की बारी लग रहा है कि तेवर कम्युनिटी जो है वो गाउंडरों पे हावी पड़ गया है। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई स्थायी सोल्यूशन है। कहीं ना कहीं जो गाउंडर MLAs हैं वो अपने आप को रीग्रुप करेंगे, अपने तंबी दोराय हैं, गाउंडर हैं, उनको भी एक नेता के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा था। तो ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो धीरे 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 और शार्पन होते जाएंगे, और तब हमें देखना होगा कि क्या स्वरूप लेता है। फिलहाल शशिकला को महासचिव घोषित किया गया है, तो वो जरूर वो पद का पूरा इस्तेमाल करके अपना पोजीशन कंसोलिडेट करेगी। वो गाउंडर और दलितों को जिस ढंग से जयललिता सारी जात को अपनी छत्र छाया में रख पाती थी, वैसे ये रख पाएगी क्या, ये हमें देखना होगा। और जहां तक उनकी पर्सनल संपत्ति की बात है, मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से दीपा इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रही है रोज रोज, कोई ना कोई ताकत उनके पीछे है, और इसका जरूर चैलेंज होगा।
वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि दिल्ली से निकलने वाले अखबारों ने आज किन खबरों को प्राथमिकता दी, और अखबारों की सुर्खियां बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वात्सल्य राय। वात्सल्य, आज का दिन बहुत खास है, 16 दिसंबर 4 साल पहले इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। आज अखबारों ने इस खबर को कैसी प्राथमिकता दी है, क्या कुछ लिखा है?
जी, मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले आंकड़े के लिहाज से मैं बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट की है और उसमें आंकड़े बताए हैं। 4 साल के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है आंकड़ों के लिहाज से कि बलात्कार की संख्या बढ़ी है दिल्ली में। अखबार कहता है कि 4 साल पहले जब ये 16 दिसंबर की घटना हुई थी और इसके बाद ये माना गया था कि दिल्ली महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन स्थिति लगातार ख़राब होती गई है। 2012 में 706 मामले सामने आए थे बलात्कार के, जबकि 2016 में ये संख्या बढ़कर 2199 हो गई है, यानी 706 से 2199, कई गुने का इजाफा है। अखबार कहता है कि पुलिस से अखबार ने जब बात की तो पुलिस ने दलील ये दी कि जो 16 दिसंबर 2012 की घटना थी, उसके बाद जो कानून बना, जिस तरह से आवाज़ें उठी, तो लोग ज़्यादा जागरूक हुए और महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने आ रही हैं। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस ने भी,
सिर्फ इसको आंकड़ों की का खेल कहा जा रहा है, मतलब मामले की गंभीरता पर क्या कुछ किया जाना रहा है इस पर बहुत
जी। अखबार का ये कहना है कि जो इन मामलों में दोषी ठहराए गए लोग हैं उनकी प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है। जो 2012 में लगभग 50% लोगों को दोषी ठहराया गया था, वो संख्या लगातार घटती जा रही है और पिछले सालों में 30-35% रह गए। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी तरह की एक रिपोर्ट की है उन जगहों के बारे में जहाँ पर महिलाएँ ज़्यादा असुरक्षित हैं। इसके अलावा कल जो एक आदेश आया है कि हाईवेज़ पर हाईवे ड्राइवे हो जाएंगे, इस खबर को भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी जो ज़्यादातर अखबारों में देख रहा हूँ मैं, पहली खबर बनी हुई है और उसका हेडिंग है कौन बनेगा करोड़पति। यानी सरकार ने एक योजना का ऐलान किया है, डिजिटल लेन देन पर 1 करोड़ रुपये तक का बम्पर ऐलान किया है सरकार ने। इसे सारे अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर, ज़्यादातर अखबारों ने लीड बनाया है, खासतौर पर हिंदी अखबारों ने। दैनिक जागरण की हेडिंग कहती है कि क्रिसमस से अंबेडकर जयंती तक डिजिटल पेमेंट पर हर दिन इनाम।
लेकिन सरकार को इस बात की चिंता शायद नहीं है कि गांव में जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर स्मार्टफोन जैसी चीज़ें नहीं पहुंची हैं, वहां के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं, उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है।
उनके लिए जनसत्ता का एक कार्टून है, ये कार्टून में कहा जाता है, एक खबर की जानकारी दी गई है, नोटबंदी की वजह से बिहारी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, तो एक मजदूर सा दिखने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार के दरवाजे को खटखटा रहा है और वो कहता है कि आपने जिस नोटबंदी का समर्थन किया है हम उसी के कारण वापस आ गए हैं, अब हमारे खाने की व्यवस्था कीजिए।
जी,
यानी बड़ी तल्ख टिप्पणी इसके साथ की गई है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
भारत का संविधान करीब 80,000 शब्दों का वो दस्तावेज है जो एक गणराज्य के रूप में इसकी जीवनचर्या तय करता है। क्या आपने कभी संविधान को पढ़ा है? हमारे आसपास और हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका संबंध इससे है, लेकिन कम ही लोग हैं जो इसे पढ़ने या जानने की कोशिश करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि लंबे चौड़े संविधान की भाषा कठिन है। अगर आपको ये संविधान किसी दोहे के रूप में मिल जाए तो क्या आप इसे पढ़ना पसंद करेंगे? पुडुचेरी के पुलिस प्रमुख एसके गौतम ने यही कोशिश की है। निखिल रंजन की इस रिपोर्ट में सुनिए कि संविधान को उन्होंने कैसे कविता में ढाल दिया है।
हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं।
संगीत से सजे इन दोहों में आप जो सुन रहे हैं वो भारत का संविधान है। समझने में आसान, पढ़ने में सरल और इन्हें तो याद करना भी मुश्किल नहीं। आप भारत के संविधान को तो जानते हैं ना, हमें से बहुत लोग तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन टीवी और रेडियो पर 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत की आज़ादी का ऐलान जरूर कभी ना कभी सुना होगा। याद कीजिए।
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जिस भारत के सपने को तामीर किया था उसकी आधारशिला थी भारत का संविधान। इसे कोई 9 महीने पहले 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में इसी संविधान की रूपरेखा तय करने में जुटे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था,
Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass.
हमारी सबसे बड़ी मुश्किल दूर के भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि अलग अलग हिस्सों में फैली गंभीर अव्यवस्था को संभालना, संयुक्त रूप से फैसला करना और सहयोग के ऐसे रास्ते पर चलना है जो हमें एकता की ओर ले जा सके। हमारी चुनौती दूर का भविष्य नहीं बल्कि इस वक्त की शुरुआत है।
26 नवंबर 1949, दृढ़ निश्चय हम करते हैं।
संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं।
समानता, सहयोग, समन्वय की सोच को मजबूत करने और पूरे देश में फैली विषमता और समस्याओं को दूर कर एक गणराज्य बनाने के लक्ष्य के साथ जिस संविधान का निर्माण हुआ उसने भारत के भविष्य का आधार तो तय कर दिया, लेकिन उसकी भाषा ऐसी है जो पढ़े लिखे लोगों को भी कई बार मुश्किल में डाल देती है। IPS अधिकारी एसके गौतम ने लोगों को इसी मुश्किल से निजात दिलाने की सोची और सामने आया संविधान काव्य।
असल में भारतीय संविधान हमारे देश की नीतियों का मार्गदर्शक है, इसलिए हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है, लेकिन आम आदमी इसको आमतौर से समझ नहीं पाता है क्योंकि ये थोड़ा जटिल है। तो मैंने यही सोचा कि संविधान को कैसे एक सरल भाषा के रूप में लिखा जा सकता है, तो मैंने इसका काम शुरू किया और फिर मैंने इसको पदों के रूप में रचित किया। इसको मैंने संविधान काव्य का नाम दिया है।
मिलेगी समानता सबको, देश की जो आबादी।
पुडुचेरी के पुलिस प्रमुख पद पर तैनात एसके गौतम को लंबे समय की पुलिस की नौकरी में महसूस हुआ कि ज्यादातर लोग संविधान में वास्तव में क्या लिखा है उससे अनजान हैं। आमतौर पर लोगों को अदालतों और पुलिस की कार्रवाई के वक्त ही इसकी याद आती है। उन्होंने जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे आसान भाषा में पेश करने की सोची और सबसे पहले इसे दोहे की शक्ल में ढाल दिया।
मैंने कोशिश की है कि हर आर्टिकल को 2 लाइनों में लिखा जाए और उसके मूल भाव को उसमें समाहित किया जाए, तो उसके नीचे मैंने उसके आर्टिकल का नंबर भी लिख दिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करें विशेष।
राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए।
एक बार दोहे तैयार हो गए तो इसे किताब की शक्ल देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। सरल भाषा और एनिमेशन ने इसे ऐसा बना दिया है कि बच्चों को भी इसमें दिलचस्पी होगी। कुल 77 पन्नों की किताब में आप संविधान को जानने के साथ ही उसे याद भी कर सकते हैं।
जो भी आर्टिकल्स हैं और उसके अमेंडमेंट्स हैं वो काफी बड़े सेंटेंस हो जाते हैं, फिर उसको समझना, उसके मूल भाव को समझना, उसका कंसेप्ट को समझना। तो संविधान चूंकि इतना बड़ा है और बेसिकली ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, बड़ी चुनौती थी कि कैसे इतने जो जटिल भाषाएं हैं उसमें उसको हम कैसे साधारण भाषा में परिवर्तित कर सकें। तो शुरू में कठिनाई जरूर आई, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी इसमें रुचि भी आई और ये करीब मुझे 5 महीने इसको कंप्लीट करने में लगा।
एस के गौतम मानते हैं कि लोग अगर संविधान को जान गए तो उसका उपयोग करना भी सीख जाएंगे। खासतौर से पुलिस के मामले में ये बात और ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जब पुलिस खुद ही संविधान में दिए अधिकारों का दुरुपयोग करती है। तो क्या उन्होंने विभाग में कभी कोई कोशिश की है कि ऐसी स्थितियों को रोका या कम किया जा सके?
बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि संविधान सभी लोगों तक पहुँचे, अगर वो जान सकेंगे कि उनके क्या अधिकार हैं और उनके अधिकार अगर नहीं पालन हो रहे हैं तो वो क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे कोर्ट में पहुंच सकते हैं, अपनी दरखास्त दे सकते हैं, और जब उनकी जानकारी बढ़ेगी तो कोई भी उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है।
संविधान की कठिन भाषा उसकी एक जरूरत भी है। अलग अलग उद्देश्यों और ढेर सारे प्रावधानों को नियमों में ढालने के क्रम में इसका ऐसा स्वरूप बन जाना स्वाभाविक लगता है। तो कहीं आसान बनाने की कोशिश में इसकी गंभीरता से समझौता तो नहीं करना पड़ा?
मैंने पूरी कोशिश की है कि इसकी मूल भावना को वैसा ही रखा जाए और जहां तक है कि उसमें कोई भी इस तरह का परिवर्तन ना किया जाए, और ये मैं कहां तक सफल हो चुका हूं ये लोग ही बताएंगे।
एस के गौतम की इस कोशिश ने संविधान को सरल, सुगम और आकर्षक बना दिया है और पढ़ते वक्त ये बोझिल नहीं करता। संविधान काव्य लोगों को भारत के संविधान तक ले जाए, वो बस इतना ही चाहते हैं।
संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं हम भारत के लोग।
निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब खेल समाचार सुनिए राकेश शर्मा से।
भारतीय क्रिकेट टीम आज से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में उतर रही है। भारत ने मुंबई में खेले गए 4th टेस्ट मैच में एक पारी और 36 रनों की जीत के साथ सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके बावजूद ये टीम इंग्लैंड पर किसी तरह की नरमी नहीं बरतना चाहेगी। चेन्नई मैच भारत के स्पिनर आर अश्विन के लिए अहम होगा। अश्विन ने मुंबई टेस्ट में 12 विकेट लेकर भारत की जीत तय की थी। ये खिलाड़ी सीरीज में भारत के लिए निर्णायक साबित हुआ है। कुछ यही हाल भारतीय कप्तान विराट कोहली का भी है। कोहली ने इस सीरीज की 7 पारियों में 640 रन बना डाले हैं। आखिरी मैच में जीत की संभावनाओं पर कप्तान विराट कोहली कहते हैं,
वी जस्ट टेक वन गेम एट अ टाइम। आई डोंट थिंक वी आर लुकिंग एट कलेक्टिव सीरीज एज 4-0 फॉर अस। एवरी गेम इज सेपरेट फ्रॉम द अदर वन।
हम एक बार में एक ही मैच के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने सीरीज 4-0 से जीतने का कोई स्कोर लाइन तैयार किया है। हर टेस्ट को जीतने की हमारी भूख एक जैसी है। हम सीरीज हार भी रहे होते हैं तब भी हम उतने ही उत्साह के साथ मैदान पर उतरते हैं। हम जैसा खेल रहे हैं उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। खेल से पहले जीत की स्कोर लाइन तैयार करना सही नहीं है।
वहीं चेन्नई टेस्ट घरेलू खिलाड़ी मुरली विजय के लिए भी अहम है। वो 3 साल से भी ज्यादा अंतराल के बाद इस मैदान पर उतर रहे हैं। इस सीरीज में अब तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले विजय चेपॉक मैदान पर खेलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
आई डोंट हैव टू पर्सनली प्रिपेयर माइसेल्फ मेंटली बिकॉज़ एज आई टोल्ड यू बिफोर इट्स अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ अ गेम इन माय होम टाउन।
इस मैदान पर खेलने के लिए मुझे मानसिक तौर पर खुद को तैयार करने की जरूरत नहीं है। अपने घरेलू मैदान पर होने वाले इस मैच के लिए भारतीय टीम में होना मेरे लिए खास है। उम्मीद है मैं इसका फायदा उठा पाऊंगा। चेन्नई वासियों के लिए ये मैच यादगार होगा।
दूसरी तरफ इंग्लिश टीम इस मैच को जीतकर स्वदेश जाना चाहेगी। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद इंग्लिश टीम वनडे सीरीज खेलने फिर से भारत आएगी। चेन्नई टेस्ट इस टीम के लिए सम्मान बचाने की लड़ाई है। हालांकि इस टेस्ट से पहले ही इंग्लैंड की टीम को करारा झटका लग चुका है। टीम के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन चेन्नई टेस्ट में नहीं खेलेंगे, उन्हें बॉडी पेन की शिकायत है। ऐसे में आखिरी टेस्ट मैच में जीत की उम्मीदें मेहमान टीम के लिए और धूमिल हो गई हैं।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो से 3,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। इनमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे शामिल हैं। यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूरोपीय संघ अलेप्पो और सीरिया के दूसरे हिस्सों में जारी त्रासदी को रोकने में प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। अमरीकी सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल अकाउंट की कथित हैकिंग के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जानकारी थी। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।